शांति। नीले गगन का सूर्य तो आज बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा है, लेकिन अध्यात्म जगत में चमकने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी हम सबके बीच में है। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1964 में आपने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और फिर 1968 में आप मधुबन आ गए और जीवन को ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित किया। साकार बाबा के संग का अनुभव किया एक वर्ष और उनके रहते ही भंडारे की सेवा संभालनी शुरू की, जो आज दिन तक कायम है। वर्तमान में तीनों ही परिसर में जो शिव भोलेनाथ का भंडारा है आपके निर्देशन में न सिर्फ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन वहां तैयार ब्रह्मा भोजन खाकर हम सभी ब्राह्मण तृप्त होकर खूब दुआएं देते हैं। और न सिर्फ ब्राह्मण लोग, लेकिन जो बाहर से विजिटर्स के भी प्रोग्राम होते रहते हैं वे भी आकर खा करके तृप्त होते हैं। तो न सिर्फ पेट का भोजन का आप प्रबंध करके देते हैं, लेकिन आत्मा के भोजन का भी आप प्रबंध करके देते हैं। समस्या से समाधान एक ऐसा ही कार्यक्रम था जिसको विश्व की करोड़ों आत्माओं ने सुना, देखा, समझा और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। आज हमारे बीच में एक बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए सच्चे दिल पर साहेब को राजी करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी हो, इसकी विधि क्या है? सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। आप तो सभी सच्चे दिल वाले हो, हैं? अब भगवान से कोई झूठा चले या कैसे भी चले, उसको तो सब पता होता है, परंतु क्यों कहता है सच्चा दिल रखो? उस पे साहब राजी हो जाता है। और जो विशेष बात है इसमें जानने योग्य, जो बच्चे सच्चाई से अपनी कमजोरियां या गलतियां बाबा को सुनाते हैं, बाबा उन्हें सकास देते हैं। ये फायदा है, पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि गलती करते रहो और सुनाते रहो प्रभु जी राजी रहेंगे, ऐसा नहीं। सत्यता की शक्ति भी हमें बढ़ानी है। और क्या है सत्यता की शक्ति? क्या है? आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसमें स्थित रहना, आत्मा के सत्य स्वरूप को जानना, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना, उसमें स्थित रहना, उस पर स्थिर होना, इससे सत्यता की शक्ति बढ़ गई। प्योरिटी ही सच्चे अर्थों में सत्यता है। तो सभी बाबा से तो सच्चे हैं ही और रहेंगे, लेकिन बाबा राजी होता है हमारे पुरुषार्थ पर। हमने ये तो देखा, कुछ लोग सच सच बोलते हैं, मतलब कॉमन व्यवहार में भी सच बोलते हैं। एक छोटी सी हंसी घटना सुना देता हूं। बहुत पहले की बात है, जब यज्ञ में पैसा कम था और हम सब में से किसी के पास कोई पैसा नहीं होता था। दादी ने हाथ उठवाया, किस किस के पास पैसे हैं? किसी के पास 100 रुपए, किसी के पास 200 रुपए, इतने ही होते थे। एक ने हाथ उठाया, बहन जी ने, मेरे पास हैं। क्यों रखती हो? क्या कहा होगा? दादी, मुझे नोट देख के बड़ा मजा आता है। अब सब इतने हंसे कि वो टॉपिक वहीं पूरा हो गया। तो हमने देखा उसमें ये है, जो अंदर वही बाहर। लेकिन अगर ज्ञान योग का बल नहीं है तो आत्मा आगे नहीं बढ़ती। बाबा उन्हें प्यार भी करता है, मैंने देखा उसे बाबा प्यार भी करता था जब आते थे, उसकी महिमा भी करते थे बाबा, बहुत अच्छी सेवा करती हैं। लेकिन अपनी ज्ञान योग की कमी एक अलग कमी हो जाती है। तो केवल हमें बाबा का प्यार ही नहीं चाहिए, बोलो और क्या चाहिए? हमें सच्ची बात तो यह है कि शक्तियां बहुत चाहिए। आप माताएं भी बच्चों को प्यार देती हैं, लेकिन जब पढ़ाई का समय आ गया तो उन्हें टाइट भी तो करेंगे ना, अब पढ़ना है, उन्हें अपने से दूर भी करेंगे। ये तो नहीं ना, बहुत प्यार है तो मेरे पास ही रहो, स्कूल क्यों जाना है, ये नहीं कर सकते। तो बाबा का हमसे प्यार होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा बाबा से प्यार होना ये उससे भी अच्छी बात है। वो तो प्यार का सागर है, सबको ही प्यार करेगा। हमने देखा कोई भी आ जाए उसके सामने तो बाप है ना, और प्यार का सागर प्यार करता ही है। उसके उसे गुस्सा करना आता ही नहीं ना, उसे आता ही नहीं कि रोब कैसे करना होता है, डांटना कैसे होता है, भगवान को ये कला नहीं आती। लेकिन हमें जरूरत है बहुत शक्तियों की। तो हम सच्चाई के साथ पुरुषार्थ करेंगे। देखो एक टॉपिक को सूक्ष्म कर लें, हम योग में बैठे हैं, कई लोग सवेरे उठ के योग में बैठते हैं लेकिन योग ना लगे तो वो योग के बारे में सच्चाई तो नहीं है ना। मुरली में रोज आते हैं लेकिन मुरली का रस न ले रहे हों तो वो भी सच्चाई वफादारी नहीं है। तो आज हम और कुछ भी करेंगे, पहले तो पुरुषार्थ की प्लानिंग जो बहुत जरूरी है। प्लानिंग के बारे में सभी को एक बात जाननी चाहिए कि एक ही प्लानिंग सदा नहीं चलेगी, पक्का रख दें। आपने कोई एक प्लान कर लिया, 15-20 दिन के बाद वो रस नहीं देगा, उससे उन्नति नहीं होगी, मन भी बोर होगा, रोज यही चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सभी अपने उन्नति की प्लानिंग खुद करना सीखें। जिस तरह से हमारी उन्नति हो, अब मैं आपको थोड़े से अनुभव सुनाऊं। मैंने अपने जीवन में बहुत तरह के चार्ट लिखे, शुरू में कम से कम 25-30 साल तक भिन्न भिन्न तरह के चार्ट लिखे। साकार बाबा के समय एक 20 पॉइंट का चार्ट लिखा करते थे, मैंने उसको और बढ़ाया। एक मुरली चली जिसमें बाबा ने बहुत सारी धारणाओं की बातें बनाए बताई, मैंने उसको रखते हुए 36 पॉइंट का चार्ट बनाया। मैं आपको दो बातें उसमें कह रहा हूं, एक पॉइंट थी टाइम वेस्ट तो नहीं किया, दूसरा था पर चिंतन चला, तो रोज ही लिखना पड़ता था चला। टाइम वेस्ट किया होगा ना, रोज ऐसा तो नहीं ना 24 घंटे सेकंड बाय सेकंड सफल हो रहे हैं, वेस्ट होता ही नहीं। तो मुझे लगा इसमें तो मजा नहीं आता, तो फिर मैंने एक 7 पॉइंट का चार्ट पॉजिटिव बनाया, जिसमें वो बातें लिखी जो हमें करनी है। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं हुई, ये सब नहीं, जो मुझे करना है उसकी 7 बातें लिख ली। जैसे आज ईश्वमान का अभ्यास करेंगे, आज ये धारणा रहेगी, इस पे पूरा ध्यान देंगे, आज सेवा करते हुए ये अभ्यास करेंगे, ऐसे तो उसमें ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा रहा। चार्ट बदलते गए, हम बदले कैसे कि अपनी जो कमी महसूस हुई उसको भरने का चार्ट बनाया, 5-7 पॉइंट का ही बहुत लंबा चार्ट। फिर मुझे लगा ये यथार्थ विधि नहीं है, कोई कमी महसूस हो रही है जीवन में, उसको भरना है तो उसके लिए 1 पॉइंट। और अपनी कमियों का आभास किस मनुष्य को होता है? जो तेज पुरुषार्थ करते हैं, सच्चाई तो है ही, लेकिन पता भी तो चले। बहुत सूक्ष्म कमजोरियां भी आत्मा में होती हैं जिनका उसे पता नहीं चलता। मैं एक और अनुभव सुनाता हूँ, ये अनुभव सुनाए तो नहीं जाते, पर पुरुषार्थ के लिए सुनाना भी अच्छा होता है। मुझे याद आ गया, मैं छोटा ही था और किचन में गया था, तो बाबा का भोग बन रहा था हलवा देसी घी में, खुशबू कितनी अच्छी आती है, खुशबू आ रही बहुत सुंदर, आसक्ति हुई, खा तो नहीं सकते, भोग लगेगा, आसक्ति गई और योग टूटा। तो यहां मुझे रियलाइज हुआ कि आसक्ति योग को तोड़ती है, आसक्ति को हटाना है। मैं सोचा पीछे मुझे बनाने को मिला, तो मैं सोचा ये हलवा क्या है, आटा, चीनी, पानी और घी, अगर तुम्हें ये चारों चीजें अलग दे दी जाएं खाने को, अलग अलग, मैं जो सोचा उस टाइम वो बता रहा हूं, तो कैसा रहेगा? मिलजुल गया तो खुशबू आ रही है, खाने की इच्छा, इस एक संकल्प ने आसक्ति को खत्म किया। ये बहुत सुंदर बात थी मेरे लिए कि इस एक चिंतन ने खाने पीने की आसक्ति से बुद्धि हटा दी, वो बाबा का बल रहा उस टाइम लगा। दूसरा दिन एक वो भी घटना थी, एक बुजुर्ग माता रहती थी पुरानी, उसको बुद्धि थोड़ी आधी थी, बोलती ज्यादा थी, गाली वाली देती रहती थी और बोलती ज्यादा थी, हम छोटे थे तो उसको छेड़ने में थोड़ा मजा आता था, उसको छेड़ाते थे, पीछे रहती थी, वहीं हमारी लकड़ी पड़ी होती थी, लकड़ी उठा के लाते थे तो एक दो उसके दरवाजे पे भी डाल आए जानबूझ के, तो वो गाली देना शुरू करे, चिड़े, हम लोग खुश हों जो 2-3 होते थे। तो वो आ गई जी किचन में एक दिन, अभी वो तो बातचीत करे खूब बोलेगी, उसको याद कुछ नहीं रहता था क्या किया, प्यार करती थी फिर आके, तो मुझे लगा ये फिर आ गई बहुत बोलेगी। ये सोचते ही योग खत्म, तो रियलाइजेशन हुआ कि अवगुण देखते ही योग खत्म हो जाता है। तो अवगुण नहीं देखने हैं, ऐसे मैंने अपनी 16 कमियों को नोट किया जो सूक्ष्म होती हैं, उन पे पुरुषार्थ किया, उनको हटाया। तो पहली चीज होती है आत्मा को रियलाइज हो कि मेरे अंदर ये कमी है। आपको परिवारों में एक समस्या आती होगी कि कोई ना कोई एक दो व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी स्थिति को डगमग करने वाला होगा, कुछ बोलने वाला होगा, या गुस्सा करेगा, या आपसे थोड़ी भी गलती हो गई तो कमेंट करेगा, चली गई ओम शांति में, और कुछ तो मिलता नहीं, यही कहेंगे। तो क्या करना चाहिए? सुनना तो बहुत पड़ता है ना, और बाबा के बच्चे सुनने को तैयार रहते हैं। लोग बोलते थे जब, अब तो कम बोलने लगे कि ब्रह्मा कुमारियों ने इनको चिकना घड़ा बना दिया, कुछ भी कहते रहो इन पे तो असर ही नहीं पड़ता, ये तो ताकत आ ही जाती है। लेकिन कोई बाहर वाला कह दे, अपना कह दे, और आगे चलो, संगठन जहां हमारा होता है वहां कोई कुछ कह देता है तो स्थिति डामाडोल होती है। तो हम ऐसे में अपनी स्थिति को मजबूत कैसे रखें? बोलो। हाँ, देख लो कितना सहज होता है ये। शुभ भावना रखें। एक तो सदैव ये याद रखना है कि हम सब जो अभी इकट्ठे हुए हैं उनका कर्मों का खाता ज्यादा घनिष्ठ का है, तभी तो घनिष्ठ हुए हैं ना। यहाँ एक परिवार में आए, आपके बच्चे बन गए, आपके लड़के की शादी हुई, बहू आई, वही क्यों आई? क्योंकि उससे कर्मों का हिसाब किताब है। कोई लेने आता है, कोई देने आता है। मैं तो माताओं की स्थिति पर विचार किया करता हूँ, मेरे पास आती है ना माताएं, बताती हैं लड़के की शादी की थी, बड़े शौक से इतना खर्च किया था, बहू ने आके लड़के को मेरे से अलग कर दिया, बात भी नहीं करने देती, मैं तरस जाती हूँ, लड़के का फोन आ जाए करने ही नहीं देती। तो मैं सोचता हूँ ये माँ, देखो आप सब माँ है ना, बच्चों को पाला पोसा, क्या क्या नहीं किया उनके लिए, प्यार लुटा दिया, जीवन ही बच्चे थे, प्यार से सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, और शादी हुई तो बहू देखने भी नहीं देती, कई तो ऐसी जगह है देखने भी नहीं देती। तो मैं सोचा करता हूँ इनको अपने मन को स्ट्रोंग करना कितना कठिन है, कितने संकल्प चलते हैं, मन टूट जाता है, ये डिप्रेशन की स्थिति आती है, एक आधा डिप्रेशन ये होता है। कैसे इसको स्वीकार करें, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ रही हैं आजकल। लड़कियों को ये तो कहीं सिखाया नहीं जाता कि परिवार को जोड़ना, ये कम सिखाया जाता है, तो वो कुछ और ही करने लगती हैं। अच्छी भी लड़कियां आती हैं, मैंने देखा कई आती हैं ज्ञान वाली, सास और बहू जैसे गुड फ्रेंड, सारा दिन हंसते बहलते एक दूसरे को ऐसे खुश रखती हैं, बात मत पूछो, कहिए देखो कितना अच्छा इनका जीवन है। तो वो अच्छा कर्मों का नाता है, एक दूसरे के लिए सुखदाई बन गए हैं, दूसरे की कमजोरियों को अपनी शक्ति बनाओ, नोट करो और इस पे काम करना, दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बनाओ। कैसे? अब एक व्यक्ति है आपके ऑफिस में है, या घर में है, या फ्रेंड सर्किल में है, वो आपको बुरा बोलता रहता है, ज्ञान की बात नहीं, और कुछ बुरा बुरा बोलता है। अब बुरा बोलना उसकी कमजोरी है, लेकिन अगर हम ये सीख लें कि हमें अपनी स्थिति को नहीं बिगड़ने देना है, तो ये हो जाएगी हमारी शक्ति। हम पावरफुल वन हो जाएंगे, वो बोलता ही रह जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस पे सभी को काम करना है, क्योंकि सभी के पीछे कोई एक तो पड़ा ही रहता है, है या नहीं? मैं साक्षी हो के सबको देखता हूँ, हमारे भी तो संगठन बहुत बड़े हैं ना, हर एक के पीछे एक तो लगा हुआ है। कोई कितना भी अच्छा काम करता हो, मेरे पीछे भी लगे रहते थे, लेकिन मैंने क्या किया कि उनको पीछे छोड़ दिया, तुम करते रहो, हम तो चले। संकल्पों की तो बात है ना, संगठनों हैं, रहम आता है, अहम वही तो खतरनाक है ना, उसको ही तो जीतना है, अहम से फिर लड़ाई होती है ना। तो अगर हम ये स्वीकार कर लें कि अब ये सब कुछ होगा ही, मैं इतना अच्छा, मैं इतनी अच्छी, फिर भी लोग ये ऐसा क्यों करते हैं, उदास हो जाना, सोचते रह जाना, इससे हम पीछे रह जाएंगे। ये जो करते हैं करो, मुझे तो वो करना है जो बाबा कह रहे हैं। इसी हॉल की एक बात सुना दूं, अव्यक्त बाबा आए थे और ये स्टेज नहीं होती थी, ये जो आगे की है प्लेन होता था सारा, तो मधुवन वाले थे केवल, और सबको एक एक को मिलना था। ये बहुत मौके मिले हम लोगों को, एक एक को मिले, बाबा ने कुछ कहा, हमें कुछ कहना है, हमने कुछ कहा बाबा को, तो सब मिल रहे थे। मजा आता है बाबा से मिलने में, तो क्या नहीं होता था उन दिनों, छोटी सी सभा, इतनी थोड़ा ही होती थी, इसे 1/3 एक तिहाई सभा बस। तो एक बहन आई मिलने, उसने बाबा से दृष्टि भी नहीं ली, बैठते ही कहा, बाबा मुझे सब बहुत तंग करते हैं। बाबा सुनने लगे उसकी बात, बाबा तो सुनेगा ना, सबकी सुनता है, मैं बीमार रहती हूँ, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, बीमारी नहीं है, बहाना करती है, काम नहीं करना चाहती, बोलते रहते, मेरी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बाबा ने सब सुना प्यार से, और फिर बहुत अच्छी बात उसे कही, उसको तो वो काम नहीं आई पर मुझे बहुत काम आई। क्योंकि क्या होता है, कुछ आत्माओं में, इसमें उनमें जिनके अंदर बहुत भरा होता है ना, वो जब तक पूरा न सुना लें, वो सुन नहीं सकते कुछ। मेरे पास भी तो आती है माताएं, सुनाती रहती है, मैं कहता हूं बस सुन लिया माता जी, समझ लिया, और सुनाई नहीं, अभी सुनो मेरी बात। फिर मैं कुछ सुनाता हूं और पूछता हूं क्या सुना, तो सुना ही नहीं। फिर मैं उन्हें शांत करता हूं, मन को शांत करो, और बहुतों को तो डायरी पेन मंगवाता हूं, लिखो जो मैं बताता हूं, नहीं तो सुनते ही नहीं, कुछ बताया तो था, पता नहीं क्या बताया था। तो बाबा ने उसकी सारी सुनी और बाबा ने उसको कहा, जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते, तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ती हो? ये थी वो सुंदर बात, मेरे को तो तीर की तरह गई अंदर, क्या सुंदर बात कही। तो स्वीकार करेंगे परिवारों में, जहां हैं, ऑफिस, दुकान, कहीं भी, और अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है, पावरफुल बनना है। मैंने कल भी आपको कहा, आज और चिंतन कर लो इस पर, जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है और जो होने जा रहा है, उसका हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान अवश्य होना चाहिए, भले ही थोड़ा ही हो। विनाश होगा ये तो हमें पता है ना, ऐसा तो नहीं ना, नहीं पता। कई लोग ये बात सुन सुन के बोर हो गए, कितने समय से कह रहे विनाश होगा होगा, होता तो है ही नहीं, कहीं ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, कहीं रह तो नहीं जाएगा। जब सन 2000 आया था ना, चेंज हो रहा था ना, शताब्दी चेंज हो रही, मिलेनियम चेंज ऐसा बहुत चल रहा था, तो साइंटिस्ट, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता सभी बोल रहे थे कि 2000 में महाविनाश होगा। हम लोग कम बोल रहे थे, दुनिया वाले ज्यादा बोल रहे थे। साइंटिस्ट बोल रहे थे कि 8 ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं 2000 में, डेट भी बताई हुई थी, इस दिन भयानक विनाश होगा। फिर बताया कि एक लाइन में आए नहीं, चेंज हो गए थोड़े थोड़े। हम तो समझते हैं क्यों चेंज हो गए, हम तैयार नहीं, हम ही एक लाइन पे नहीं चल रहे। तो ग्रहों ने भी सोचा ये नीचे वाले ही नहीं चल रहे, तो गड़बड़ कर दी। तो तब से जो ज्ञान में उससे पहले से 85 से 90 से सबको था, बहुत तेज पुरुषार्थ कराया था बाबा ने, बाबा भी उसका फायदा उठाता है, पूरा तेज पुरुषार्थ कराया और किया करने वालों ने, नहीं हुआ फिर नहीं हुआ फिर नहीं हुआ, तो कईयों को संशय नहीं आता पर संकल्प रहता है, कहते तो आते हैं हो तो नहीं रहा, पर अब सीरियस स्थिति संसार में भी दिखाई दे रही है ना। संसार दो भागों में बंट चुका है, वर्ल्ड वॉर के लिए दो भागों में ही बंटना होता है दुनिया को, तो तैयारी हो रही है बहुत अच्छी तरह। हमें अपनी स्थिति को बहुत स्ट्रोंग बनाना है, अब विचार इस पे करेंगे। तो क्या क्या करें प्लानिंग में, एक चीज और आपको कहूंगा, हमने फिर एक और बहुत अच्छी प्लानिंग की बाबा की आज्ञा अनुसार, और वो थी बाबा की मुरलियों में आता है, जो भी आप में से बहुत तेज पुरुषार्थ करना चाहे वो दो प्लानिंग में आपके सामने रख रहा हूं। बाबा की मुरलियों में आता है कि मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। जो बड़े आदमी होते हैं उनका टाइम टेबल फिक्स रहता है, तुम भी बड़े आदमी हो टाइम टेबल बनाओ। तो हमने घंटे वाइज आवर ली, इस घंटे में यह अभ्यास करेंगे, इस घंटे में यह अभ्यास करेंगे, पूरे दिन का प्रोग्राम बनाया। वो बहुत सुंदर प्रोग्राम था। इसको ही आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो करना सहज नहीं होता, कि जितने तरह के कर्म आप सारे दिन में करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, 16 बनाना कम से कम, उससे भी कम बनानी हो तो 12, इससे कम नहीं। कैसे कर्म, कुछ कर्म अपने शरीर से जुड़े होते हैं और कुछ कर्म जो लौकिक कार्य हैं आपके उससे जुड़े होते हैं। शारीरिक कर्म, सवेरे हम उठे, मुझे आदत है आंखों पे पानी डालने की, आप में से भी कईयों को होगी, मुंह धोते हैं, जीभ साफ करते हैं, कोई ब्रश करते हैं, ये करते हुए ये अभ्यास करेंगे, फिक्स कर दो भाई, उठे आंखों पे पानी डाल रहे तो अभ्यास कर लिया, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। एक ही बार का तो है, 5 सेकंड लगे, इसको धीरे धीरे फील करने लगेंगे, शरीर नीचे था, मैं आत्मा ऊपर से उतरने लगी, आ गई यहां, ये फीलिंग। फिर मान लो पानी पीना है, सवेरे पीना है, दिन में पीना है, पानी को आप चार्ज करके पी सकते हैं, प्योरिटी को बढ़ाने के लिए आप हर बार पानी को दृष्टि दे के 3 बार संकल्प कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं या पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं, तो आंखों से प्योर वाइब्रेशंस पानी में समा जाएंगे। ये पानी में वाइब्रेशंस को समाने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमारे शरीर में पानी है ना 70%। ये संसार की रचना बहुत वंडरफुल है। 70% ही सागर है धरती पर, 70% ही पानी है शरीर में। हमें भी इसलिए पानी पीना ही चाहिए। अच्छा, मैं इस सृष्टि ये जो संसार का खेल चल रहा है ना, जब हम पढ़ते थे केमिस्ट्री थी तो तब तो सारा पता होता था, अब तो भूल गए, बहुत साल हो गए। तो 8 का खेल कितना जबरदस्त चलता है एटॉमिक थ्योरी में। 8 पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 8 संख्या 8 ही होती है वहां भी। 8 ग्रह, 9वां तो सूरज होता है जो घूम नहीं रहा है ऐसा मानते हैं। 8ों के 8ों ग्रह एक साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहे हैं। 8 ही रतन बाबा के, 8 ही गद्दियां। 8 का अंक बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सवेरे उठने से शाम तक उसमें पानी पर बहुत अच्छे प्रयोग आप करेंगे। बीमारियों में देखो, एक बहन का कल फोन आया, उसके लड़के का आया। उसको 2 साल पहले कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा था 3 माह से ज्यादा नहीं जिएगी। तो कुछ अभ्यास बताए थे उसको, उसने किए, 2 साल जी, वो अभी भी जी रही है, पर कहा कैंसर बहुत बढ़ गया फिर से। मैंने कहा तुमने एक गलती जरूर की होगी, पानी चार्ज करके नहीं पिया। कहा कभी कभी पीती थी। पानी चार्ज करके पीना अनेक बीमारियों की दवाई है। 2-3 बार तो रोज चार्ज करके पी ही लो। पानी को दृष्टि देके 7 बार संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। पानी में सारी शक्तियां समा जाएंगी, पीते ही शरीर में जाएंगी, शरीर में जो पानी है उसको ठीक करेंगी, बहुत बीमारियां ठीक होंगी। अब स्लिम का तो मैंने किसी पे प्रयोग कराया नहीं भाई अब तक। क्या करोगे स्लिम होके, अब तो मस्त रहो। और मोटी हो जाएंगी, लेकिन मस्त रहने से ये समस्या हो सकती है। अरे जो है जैसे है मस्त रहना चाहिए। मैंने देखा कई बहनें ज्यादा मोटी हो जाती हैं। बहुत मोटा होना तो अच्छा नहीं, पर आप तो कोई बहुत मोटी नहीं हो। तो सीढ़ियां फटाफट चढ़ जाती हैं। मन को चुस्त रखना, बाकी खान पान पे ध्यान देना, थोड़ा सा गर्म पानी पीना शुरू कर दो, हमेशा ही गर्म पानी। सर्दी या गर्मी में भी 2-3 बार उठते ही या खाने से पहले थोड़ा, आधा गिलास भी अच्छा गर्म पानी, खाने के बाद आधा गिलास गर्म पानी, इससे बहुत मदद मिलती है। तो कर्मों की लिस्ट बनाएंगे। अब भाइयों को सेविंग करनी है, 5 मिनट तो लगेगा। एक अभ्यास ले लो कोई भी, ये अभ्यास करेंगे। स्नान सबको करना है। बाबा ने उन दिनों एक मुरली भी चलाई थी, 79 की है वो, कि ऐसा अभ्यास करो, मैं आत्मा देवी हूं, ये देह मेरा मंदिर है, इसकी धुलाई सफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी न्यारेपन की अनुभूति होगी। आज भी थी ना न्यारेपन पे, देही अभिमानी पे भी थी, सारे संसार से बुद्धि हटाकर था ना आज मुरली में, जीते जी मर जाओ, यह है देही अभिमानी। अब बड़ी स्थिति ना आखिरी, देह संसार के आकर्षण समाप्त हो जाए, समय लेता है यह अभ्यास। तो कर्मों की लिस्ट बनाना, कपड़े बदलना, देर तो लगती है ना। हम तब किचन में थे तो कई बार कपड़े बदलते थे, किचन में आए अलग रखते थे, बाबा के रूम में जाना, क्लास में जाना, उसके अलग, 4-5 बार बदलना ही पड़ता था। तो मैंने सोचा इसमें भी तो टाइम लगता है, तो जब कपड़े बदलेंगे ये अभ्यास करेंगे। खाना बनाते ये अभ्यास करेंगे, घर से बाहर जाना ये अभ्यास करेंगे, बाइक चलाते हैं बैठते ही ये अभ्यास करेंगे, दुकान है दुकान खोलते ही पहले ये अभ्यास करेंगे। एक प्रोग्राम बनाओ अपना, कर्म योग हो जाए, इस कर्म में ये अभ्यास, इस कर्म में ये अभ्यास। मैं कुछ अभ्यास लिखा देता हूं आपको, वो आप खुद सेट कर लेना कर्मों में, ठीक है ना, क्लियर है ना बात। एक मैंने बताया जो उन दिनों बाबा बहुत सिखाते थे, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूं, बहुत सिखाते थे बाबा की मुरलियों में आता ही रहता, ताकि न्यारापन फील हो, देह अलग मैं ऊपर से आत्मा आ गई। कभी मैं आत्मा, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं 4-5 स्वमान लिखा देता हूं जो कर्मों में अभ्यास करेंगे और कुछ योग के अभ्यास। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वमान बहुत बड़ी चीज होता है, उस पे ध्यान देंगे सभी। योग के अभ्यास, योग के अलावा एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो आपने बहुत बार सुना है लेकिन उसको गहरी फीलिंग में लाना है, भगवान मेरे साथ है। साथ के दो अर्थ होते हैं, एक तो लिटरली कोई साथ हो, फिजिकली साथ रहता हो, दूसरा है मान लो आपका कोई रिलेटिव चीफ मिनिस्टर है तो आपको नशा रहेगा ना, वो व्यक्ति मेरे साथ है। दो अर्थ होते हैं साथ के। तो भगवान हमारे साथ है, इसको नशे में ले आओ। मैं भी आज सोच रहा था, रात भी सोचा, यहां से गया क्लास के बाद तो विचार आ रहा था मुझे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह भगवान का साथ मिलेगा। उस साथ का पता मुरलियों से चलता है, बच्चे मैं तुम्हारी सेवा करने आया, आज की मुरली थी ना, तुम्हें रूहानी नैनों पर बैठा कर घर वापिस ले जाऊंगा, तुम्हें इतना सब कुछ दे दूंगा, शांति समृद्धि संपत्ति सब। तो पता चलता है ना किस तरह की समीपता हो गई, किस तरह साथ मिल रहा है। और बाबा के साथ के अनुभव करते जाएंगे, उसकी साथ, उसके साथ होने से मदद क्या मिलती है, होता क्या है, तो नशा चढ़ता जाएगा। बहुत कुछ होता है उसके साथ से। किसी कर्म में सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इसको चिंतन में लाना है। बहुत अच्छा नशा हो जाए तो बाबा के ही महावाक्य हैं, वहीं से मैंने इसका अभ्यास किया था कि अगर तुम्हें ये नशा रहे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। एक और अभ्यास, बाप दादा का आह्वान, बहुत सिखाया था बाबा ने, फिर मैंने सिखाया सबको, आप करते होंगे, करते हैं, कौन कौन करते हैं हाथ उठाओ, वेरी गुड, माताएं सदाई आगे हैं। कम से कम 5 बार और एक बार बहुत अच्छी तरह, एक बार केवल बहुत अच्छी तरह। कैसे, कि मुझे अपने घर में बाबा को बुलाना है। देखो मैं बोल रहा हूं और आप अपने घर में बुलाओ, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बुलाओ। निमंत्रण दिया, बाबा आ जाओ, और देखो आपके घर में आके खड़े हो गए हैं बाप दादा। बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, आपका पूरा घर बाबा की किरणों से भर गया है। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा को पूरे घर में घुमा रही हूं। बाबा एक एक जगह दृष्टि दे रहे हैं, मैं यहां ले गई, यहां ले गई, यहां ले गई। फिर बाबा आए, मुझे दृष्टि दी और वापिस गए अपने धाम। हमने कम समय में किया, अब 3 मिनट लगाना, 5 मिनट भी लगा सकते हैं, एक बात। बाकी समय आप बाइक पे जा रहे हैं, बाबा आ जाओ, ऐसे ही बस। बाबा का आह्वान अपनेपन से, अधिकार से, इन दोनों शब्दों पे ध्यान देना, अपनापन और मेरा है तो उस पे अधिकार। बहुत मदद के अनुभव होंगे, घर से बाहर जा रहे हैं आप सारे दिन के लिए, बाबा का आह्वान कर लो और बाबा को कहो भी यहीं रहना सारा दिन, हम जा रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी कर देना, चोर आएंगे ही नहीं, चाहे सबको लूट रहे हो आपके घर में नहीं आएंगे। एक ने अनुभव सुनाया, मुझे पूरा तो भूल रहा है, कोई गए ऐसे ही घर से, 4 चोर आ गए रात को और थोड़ी देर में भाग गए। कहीं उन्होंने बताया, पता चला होगा, मिलन हुआ या पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कहा एक बूढ़ा व्यक्ति मोटा सी लाठी लेके पहरा दे रहा था वहां, और उसे देखते ही हम डर गए। ये भी तो हो सकता है, बूढ़ा एक है, वो चार हैं, पकड़ो बूढ़े को, लेकिन वो होगा ही नहीं, संकल्प ही नहीं आएगा, वो संकल्प ही बदल गए। बाबा का भिन्न भिन्न तरह से अपने जीवन में यूज करो। ये बाबा के ही महावाक्य थे, बहुत साल पहले की बात है। बच्चे 2 भुजा वालों के पास जाते हैं, 1000 भुजा वाले के पास क्यों नहीं आते? मुझे लगा भगवान कह रहा है मेरे पास आओ ना, अरे मैं हूं ना, तुम क्यों भटक रहे हो इधर उधर, आ जाओ देखो मैं क्या करता हूं। तो मैंने बहुत यूज किया बाबा को। 1 साल के लिए बाबा ने होमवर्क दिया था, तो बाबा को भिन्न भिन्न जगह यूज करना, जहां भी कठिनाई आए। अब मैं आपको याद दिला देता हूं 2 बातें, और उनका प्रयोग बहुत अच्छी तरह करना। 1, मन के सारे बोझ बाबा को दे दो। आपको जिम्मेदारी सता रही हो कोई, बच्चों की कोई बात परेशान कर रही हो, उनकी शादियों की कोई बात हो, काम धंधों की कोई बात भारी कर रही हो, बाबा के पास जाओ, चाहे सुख समतन में, चाहे बाबा के रूम में, चाहे अपने घर में ही। बाबा तुम्हारे हवाले, अब तुम संभालो इसे। प्लानिंग ही उसके हाथ में सौंप दो। मैंने कुछ समय ये अभ्यास किया था, हर चीज की प्लानिंग तुम करो। अब तो उससे अच्छी प्लानिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। बीमारी भी हो गई, मुझे ठीक होना है, प्लानिंग आप करो, क्या होना, कहाँ जाना, किसको, किससे ठीक करना, वो आपका काम। ये अनुभव बहुत अच्छे होंगे। और बाबा का महावाक्य लिख लो, जो मैं तो बहुत सुनाया है क्लासेज में, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बहुत सुंदर बात है ये। उठाएगा या नहीं? दूसरी बात, अब उसका अनुभव रोज करना, उससे जुड़ी हुई है बाबा के आह्वान से। चलो मैं बोलता हूं, अब आप अपनी बुद्धि को तेज दौड़ाओ और याद करना, जब भी मुश्किलात आए। आगे आपको बोलना, भाई लोग नहीं बोल रहे। जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो, तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अति सुंदर बात है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा जब भगवान इस तरह मदद करने को तैयार रहता हो। बस बुलाया करें अधिकार से। और बातें लिख लो, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, शिव बाबा ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया है, कभी अभ्यास करना। किसी कर्म में अभ्यास करना, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आपको योग का एक बहुत मनोरंजक अभ्यास बता रहा हूं, बैठ के करना। हो मेरे ऊपर लेफ्ट में ब्रह्मा मां, राइट में ज्ञान सूर्य शिव बाबा, बहुत ऊपर नहीं, इधर ही ऊपर, समझ गए ना, इधर ही माना 5-7 फुट पर दोनों आ गए। ब्रह्मा मां के मस्तक से शीतल किरणें आ रही हैं। ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें आ रही हैं। खेल करने लगो, 5 सेकंड से शुरू करो। 5 सेकंड ब्रह्मा मां की भ्रकुटी से शीतल किरणों का फाउंटेन, फिर 5 सेकंड ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन। 5-5 सेकंड कर लो 2-3 बार, फिर इसको 10 सेकंड बढ़ा दो, बहुत मजा आएगा। 10 बार कर दो, एकाग्रता फर्स्ट क्लास हो जाएगी, योग में सुख मिलेगा, ये सब कंप्लेन समाप्त हो जाएंगी कि मन भटकता है, क्या करें, इधर भागा उधर भागा। हम मन को कुछ अभ्यास दिया करें तो मन भागेगा नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना, चलो योग में बैठते, योग में बैठ गए तो मन भागता है। ये अभ्यास करेंगे तो मन भागेगा नहीं, ये माना कोई भी। एक और रूहानी ड्रिल आपको बता रहा हूं, 2 तरह की ड्रिल बाबा ने सिखाई थी। मैं फरिश्ता हूं, पहले अपने को ये देखेंगे, आत्मा यहां बैठी है, शरीर लाइट का हो गया है, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता सुख संवतन में हूं, सामने बाप दादा, देखेंगे, विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, देखेंगे सामने बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं। शुक्रिया कर दो उसको किसी चीज के लिए, 2-3 चीजों के लिए। बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, सूक्ष्म शरीर वहीं लोप हो गया, मैं आत्मा बनकर चली गई बाबा के पास, ऊपर बाबा नीचे मैं। थोड़ी देर फिर वहां से भरपूर होकर मैं आत्मा अवतरित हुई देह में। 5 बार कर लो। जिसका योग नहीं लगता फर्स्ट क्लास लगेगा, योग लगाने की सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी। पसंद है ना इसको रूहानी दिल का। और इसको सिंप्लीफाई कर दिया था बाबा ने, मैं आत्मा हूं, विजुअलाइजेशन, समझ रहे ना, देखना देखना, चमकती मणि किरणें फैल रही हैं, मैं आत्मा निकलकर उड़ती जा रही हूं, देखेंगे जाते हुए पहुंच गई बाबा के पास, थोड़ी देर शिव बाबा के पास बैठ गई, उसके वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, उसके बीच में मैं भी बैठ गई जाके, फिर मैं आत्मा वापिस आ रही है, आते हुए अपने को देखेंगे, 5 सेकंड लगा दो जाने में, 5 सेकंड आने में, फिर मैं भ्रकुटी की कुटिया में आ गई, फिर गई बाबा को टच किया, वापिस आ गई। 10 बार कर दो ड्रिल, योग फर्स्ट क्लास लगेगा, बुद्धि शांत होगी। कभी अभ्यास कर लेना है, 5 स्वरूपों का बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, उसको भिन्न भिन्न भागों में आप बांट भी सकते हैं, फरिश्ते का और आत्मा का हमने किया। भविष्य का नशा, मनुष्य से देवता बनने वाले, अच्छा नशा ले लो, राजाई मिलने वाली है, ये न सोचना हमें कहाँ मिलेगी, सब राजा थोड़ा ही बनेंगे, ये सोचना नहीं, राजाई मिलने वाली है स्वर्ग की, कभी मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं। 5 सेकंड के लिए अपना उस स्वरूप देख लिया करें, तो जिस स्मृति का हम बहुत अभ्यास करेंगे वही हमारा स्वरूप बन जाएगा। बार बार आप सोच रहे हैं मैं एक महान आत्मा हूं, महान बन जाएंगे। बार बार सोच रहे हैं मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं, वही बनेंगे। बार बार सोचेंगे मैं विजयी रतन हूं, विजय होगी। बार बार सोचेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तिशाली बन जाएंगे। जो बार बार सोचेंगे वही बन जाएंगे। 2 बातें और सुन लो बस। योग में मन की एक गति पे ध्यान दें। मन का काम है सोचना, या तो हम उसे सोच दें, नहीं तो वो खुद सोचेगा। तो ये जो हमारे अभ्यास हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये है अपने मन को सोचने का काम देना। भाई हमने काम दे दिया, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, तो मन यही सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है मन को व्यर्थ से मुक्त करने का। या तो हम उसे संकल्प दें, नहीं तो वो खुद संकल्प करेगा। अब ये हमारे ऊपर है, ये हमारी साधना है कि हम अपने मन को काम देते रहिए। वही काम बताया मैंने कर्म योग का। दूसरी चीज, सदा ध्यान देंगे हमारे हर संकल्पों से एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी जनरेट हो रही है हर संकल्प से। कमजोर संकल्प करेंगे, कमजोर एनर्जी फैलेगी पूरे शरीर में। पावरफुल संकल्प करेंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलेंगे। प्योर संकल्प करेंगे, प्योर एनर्जी बॉडी में फैलेगी। कमजोर संकल्पों से बचना है। मैं सावधान कर रहा हूं ना रोज सबको, मनुष्य का ब्रेन बहुत कमजोर हो चुका है कलयुग के अंत में। ब्रेन पूरा कमजोर, क्योंकि आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है गर्भ में, केवल माँ बाप से नहीं होता, आत्मा से मुख्य रूप से होता है। आत्मा की डिग्री ही नीचे थी, 10 से लो हो गई थी ना, तो ब्रेन की डिग्री भी बहुत कम है, इसलिए कोई संकल्प जल्दी इफेक्ट कर देता है। ये समस्या बढ़ रही है, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत पावरफुल हूं, इससे हमारे ब्रेन की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो ध्यान देंगे, किसी भी बुरी बात का इफेक्ट दिमाग पे लेना नहीं है। आ गया तो जल्दी से जल्दी हटा दो, आ गया ना मुरली पढ़ लो, थोड़ी सी कोई क्लास सुन लो, उस स्थान को बदल दो, कुछ अच्छी चीज देखने लगो, वहां से अपने को चेंज करें फटाफट, तो किसी भी चीज का इफेक्ट लंबा समय चलेगा नहीं और हम तन से मन से स्वस्थ रहेंगे। और अब आपके ऊपर है, आप अपने परिवार में खुशियां भरें, शांति सुख प्रेम, और ये होगा आपकी स्थिति से। एक इष्ट देवी पूरे एरिया की देवी होती है ना, नॉर्थ की तो एक ही है, उधर सहारनपुर के आगे है शाकुंभरी, आपकी दिल्ली की भी कोई होगी एक, वहीं बड़ी बड़ी हैं, कालका देवी एक बीच में ही बनी हुई करोलबाग के आसपास, कालका जी है हाँ झंडे वाली, तो देवियां हैं ना गुड़गांव में, तो गुड़गांव वाले तो सब शीतला। तो अपने को देवी बना दो, आपका घर मंदिर बन जाएगा। ओम शांति। कंबाइंड का अर्थ ही होता है हम और बाबा, चाहे याद रखो बाबा मेरे साथ है, चाहे अभ्यास करो बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये हो गया कंबाइंड, दोनों मिले हुए। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड, ऐसे ही बाबा की याद है तो कंबाइंड है, छत्र है तो कंबाइंड है।
तो आप सभी हो ही सच्चे दिल वाले हाँ, और साहेब को राजी करते ही हो, पर उसकी आज और गहराई स्पष्ट की भ्राता जी ने। भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। कल आपने शायद विदेही के बारे में बताया होगा।
विदेही आत्मविमानी की सबसे ऊंची स्थिति है। मैंने जनक का उदाहरण दिया था ना, है
कर्म फिलोसॉफी जोड़ी थी उसके साथ।
कर्म फिलोसॉफी ये जोड़ी थी कि कर्म करते कर्म का इफेक्ट मनुष्य पर होता है, कर्म कॉन्शियस होता है। जब हम विदेही हो जाते हैं तो कर्म करते भी कर्म से उपराम रहते हैं। इसको ही कहते हैं कि योगी की निर्लिप्त स्थिति, जो शास्त्रों में लिखते हैं ना, आत्मा निर्लेप है। वो निर्लेप तो नहीं है, लेकिन कर्म का लेप छेप तो आत्मा को लगता ही है, पर योगी इससे ऊपर उठ जाता है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, लिप्त नहीं होता कर्मों में, इसलिए उसके इफेक्ट से मुक्त रहता है। ये उससे जोड़ा था। बाकी उपराम रहना संसार से, जो आज मुरली में था, जीते जी मरना, यह है देही अभिमानी स्थिति। यानी संसार से बहुत ऊंची स्थिति है, ये आपको सोचना है। जैसे संसार अब हमारे लिए नहीं है, हमारा संसार अलग है, इसमें तो हम निमित्त मात्र रह रहे हैं, क्योंकि रहना है, हम अभी जा नहीं सकते, कहीं कर्म करना है, अपने कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बाबा के हवाले होकर चलना, ये अभ्यास करना है। अब छोटे बच्चों की क्लास तो मैं प्राय कराता नहीं हूँ, वो तो कोई और कराता होगा।
वो आपसे पूछ रही है कि आपके है क्या ऐसे YouTube पर क्लास?
नहीं, छोटे बच्चे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ है समाधान कार्यक्रम में भी। समाधान में हमने पहले 30 एपिसोड स्टूडेंट के लिए ही किए हैं। उनकी जो भिन्न भिन्न बातें हैं उसमें बहुत मटेरियल है। कोई नर्वस होते हैं, कोई किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, किसी को एकाग्रता नहीं होती, किसी का स्वभाव कैसा होता है, उन सब पे डिटेल है। वो वहीं से, वो यूट्यूब में भी होंगे। मैंने उन्हें कहा था अलग अलग टॉपिक डालो इस पे विद्यार्थियों के लिए, हाँ, समस्या समाधान में। कर्म का फल तो होगा ही, हाँ। क्योंकि उसका फल नहीं होता वहां, उसकी प्रारब्ध नहीं होती वहां, इसीलिए अकर्म कहते हैं। कि सत्युग त्रेता में हम ये कर्म नहीं करते जो यहाँ करते हैं, किसी की भलाई करना, किसी को सुख देना, पैसा जमा करना, किसी की पैसे से मदद करना, ये जो पुण्य कर्म होते हैं जैसे द्वापर कलयुग में हुए, ये वहां नहीं होते। बुरा तो होता ही नहीं, पर ये कर्म भी नहीं होते। भाई किसी को मदद कर दी, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही, पैसा नहीं, उसको मदद कर दी, कोई बीमार है, दवाइयों का पैसा नहीं, उसको दे, इनका फल हमें मिलेगा। वहां ये लक्ष्य ये कुछ है ही नहीं। तो एक नॉर्मल कर्म है मनुष्य का, कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं, प्रारब्ध नहीं है उसकी, ये है वहां। मन है सोचता कभी होता ही नहीं, मन सोचेगा ही लेकिन थोड़ा सोचेगा। कोई समस्या नहीं तो क्यों सोचे, बच्चे तंग नहीं कर रहे तो क्यों सोचे, पति भी अच्छा है तो क्यों सोचे। तो असोचता नहीं होता, लेकिन बुरा सोचता नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ फल वहां तो यहाँ की प्रारब्ध है, वहां कुछ और करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना नहीं है। मस्त हैं आप, मस्त रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में देवताओं को भोगी कह दिया, भोग रहे हैं, कुछ करते नहीं हैं, खा पी रहे हैं, मस्त रहते हैं। ये त्रेता के अंत की कहानी है। अगर आप में से किसी ने पुराण आदि पढ़े हो, उनमें देवताओं के बारे में ज्यादा गड़बड़ लिखी है, इंद्र के बारे में। ये सब त्रेता के अंतिम जन्म की कहानियां हैं, असली देवताओं की नहीं। त्रेता के अंत वाले तो हल्के से देवता हैं, उन्होंने गड़बड़ ज्यादा की, हम सबने नहीं की, थोड़ी सी गड़बड़ भाव है। उनके ही पुराण लिख दिए, क्योंकि उससे पहले के देवताओं का तो किसी को पता ही नहीं था। वो जो अंतिम जन्म था स्वर्ग का, उसकी छाप लिखने वालों पर पड़ी, वही लिख दिया, देवता भी खराब थे।
तो समाधान हो गया सभी का, पुनः पुनः धन्यवाद।